بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آل عمران کی 60ویں سے لے کر 63ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہے پیغمبر، ستیہ وہی ہے جو آپ کے پالنہار کی اور سے ہے، اتا سندیہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ تو ہے پیغمبر، جو کوئی بھی ایشوریہ سندیش وحی دوارا آپ کے پاس آنے والے گیان کے پشچات آپ سے عیسیٰ مسیح کے بارے میں بحث اور وواد کرے، تو اسے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے پتروں کو لائیں اور تم اپنے پتروں کو، ہم اپنی استریوں کو لائیں اور تم اپنی استریوں کو لاؤ، ہم اپنے آتمیے لوگوں کو اور تم اپنے آتمیے لوگوں کو لاؤ، تو پھر ہم ایشور کے سمکش پرارتھنا کریں اور ایک دوسرے کو ابھیشاپ دیں، تتھا جھوٹ بولنے والوں کے لیے ایشوریہ لعنت ارتھات ابھیشاپ نردھارت کریں۔ निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। श्रोताओं, आज बुधवार है, रजब की 3, बहमन की 5 और जनवरी की 25 तारीख। इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके उपरांत कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे आशा की किरण, और श्रोताओ सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। तो ये है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे विश्व समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, अब मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने ज़ायनी शासन से जुड़े आतंकी नेटवर्क के 12 तत्वों को गिरफ्तार कर लिया है। IRGC पर पाबंदी लगाने के मसले पर यूरोपीय देशों में मतभेद नजर आ रहा है। भारतीय मीडिया के अनुसार भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को न्योता दिया है। कुवैत के सांसदों ने स्वीडन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
सैयद इस्माइल खतीब ने कहा कि ज़ायनी शासन से जुड़े आतंकी नेटवर्क के 12 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटेलिजेंस मंत्री ने जंजान प्रांत में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि दुश्मन ईरान की जनता और अधिकारियों की एकता और एकजुटता के सामने बेबस हो चुका है और दुश्मन की हर साजिश जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। उनका कहना था कि दुश्मन वैश्विक मीडिया वॉर शुरू करके ईरान की जनता को इस्लामी व्यवस्था से निराश कर देना चाहता है, मगर जनता और अधिकारियों के बीच समरसता एक बार फिर विजय के दरवाजे खोल रही है। हुज्जतुल इस्लाम सैयद इस्माइल खतीब ने कहा कि इनकलाब आने के तत्काल बाद से ही दुश्मन इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगा हुआ है। वो अपनी दुश्मनी से बाज आने वाला नहीं है और नित नई साजिशें रच रहा है। इंटेलिजेंस मंत्री ने पकड़े गए लोगों के नापाक इरादों के बारे में खुलासा किया कि वे देश के भीतर कई जगहों पर विध्वंसक कार्यवाहियां करना चाहते थे और उनके तार इसराइल से जुड़े हुए थे।
स्वीडन के विदेश मंत्री का कहना है कि IRGC के नाम को आतंकवादी गुटों की सूची में रखना उचित नहीं है। टोबियास बेलस्ट्राम से जब स्वीडन के एक सांसद ने मंगलवार को ईरान की इस्लामी क्रांति के संरक्षक बलों को आतंकवादी गुटों की सूची में डालने के फैसले के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस काम के लिए विशेष परिस्थितियों का होना और साथ ही टेररिस्ट लिंक का होना भी जरूरी है। स्वीडन के विदेश मंत्री ने कहा कि IRGC को आतंकवादी गुटों की सूची में रखना तार्किक व्यवहार नहीं है और इसकी कई कानूनी पेचीदगियां हैं। टोबियास बलस्ट्राम का ये भी कहना था कि IRGC समय प्रतिबंधित है, ऐसे में उसको आतंकी गुटों की सूची में डालने का कोई व्यवहारिक प्रभाव नहीं होगा। स्वीडन के विदेश मंत्री के इस हालिया बयान से एक दिन पहले यूरोपियन संघ की विदेश नीति के प्रभारी जोसेफ बोरेल ने कहा था कि किसी भी संगठन को आतंकवादी गुटों की सूची में डालने के लिए ये जरूरी है कि यूरोपीय संघ के किसी एक सदस्य देश की एक संसद एक कानूनी बयान जारी करे। इस बयान के जारी किए जाने के बाद हम यूरोप के स्तर पर मामले की समीक्षा करेंगे।
ईरान के विरुद्ध अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के साथ ही ब्रिटेन ने भी कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटेन ने ईरान के 5 लोगों और 2 संस्थाओं को प्रतिबंधित किया है। लंदन की ओर से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में इस्लामी गणराज्य ईरान की थलसेना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी भी शामिल हैं। प्रतिबंधों के हिसाब से पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय में ये अभूतपूर्व प्रतिबंध हैं। ईरान पर ब्रिटेन के हालिया प्रतिबंधों के बारे में इस देश के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा कि जिन पर आज प्रतिबंध लगाए गए हैं वे सब ईरानी जनता के दमन में शामिल थे। ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन की ओर से ये कदम सेना और IRGC को केंद्र में रखते हुए उठाया जा रहा है।
भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को SCO की बैठक में शामिल होने के लिए दावत दी है, जिसे दोनों पारंपरिक प्रतिद्वंदियों के संबंधों पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद लगाई जा रही है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक इसी साल मई महीने में भारत के शहर गोवा में होगी। भारत की ओर से इस बैठक का दावतनामा भेजे जाने से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को कश्मीर सहित सारे मसले हल करने के लिए संजीदा बातचीत की मांग की थी। एक महीने पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को गुजरात का कसाई कह दिया था, जिस पर हिंदूवादी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। वहीं भारत ने बिलावल भुट्टो के बयान को अभद्र कहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बिलावल भुट्टो को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बुलाने के बारे में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने तत्कालीन रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत के अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से दावतनामा इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग को मिला, जिसमें कहा गया है कि इस शंघाई सहयोग संगठन की बैठक 4 और 5 को होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान दावतनामा स्वीकार कर लेता है तो बिलावल भुट्टो पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री होंगे जो 12 साल बाद भारत का दौरा करेंगे। इससे पहले जुलाई 2010 में उस समय की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर ने भारत का दौरा किया था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सच को चाहे कितना भी क्यों न छुपाया जाए वो सामने आकर रहता है। गुजरात दंगों के बारे में BBC की डॉक्यूमेंट्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी तरह का प्रतिबंध, दमन या लोगों को डराने से सच को रोका नहीं जा सकता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि अगर आप हमारे वेदों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहां पर लिखा हुआ है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता, सत्य हमेशा सामने आ जाता है। राहुल गांधी का कहना था कि आप प्रेस पर पाबंदी लगा सकते हैं, आप CBI और ED आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सच को नहीं रोक सकते, सच अलग ही चमकता है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, जिसमें उनको बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है।
नेपाल के एकमात्र मुस्लिम मंत्री अब्दुल खान का कहना है कि नेपाल की जनता में राजनीतिक चेतना ज्यादा है और इसने मुस्लिम होने के बावजूद अगर भारत में कोई मंत्री नहीं बन पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें राजनीतिक चेतना का अभाव है, या ये भी हो सकता है कि उनको वहाँ बनने नहीं दिया जा रहा है। BBC में छपी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि नेपाल छोटा देश है लेकिन कई तरह के आंदोलन जारी रहते हैं, इसलिए लोग राजनीति को लेकर ज्यादा सजग हैं। अब्दुल खान कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर कुछ विवाद होता है तो नेपाल के मुसलमान सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। अब्दुल खान का कहना था कि मधेश के मुसलमान सीधा प्रभावित होते हैं, राम मंदिर को लेकर भारत में कुछ होता है तो नेपाल में तनाव बढ़ जाता है, राम मंदिर को लेकर यहाँ के लोग भी संगठित होने लगते हैं, यहाँ भी बहस चलने लगती है कि मुस्लिम बहुत हावी हो रहे हैं और राम मंदिर के लिए हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने हालात के बारे में बताया कि इस प्रकार का मुद्दा उठने पर नेपाली हिंदुओं में भी ये विचार उठने लगता है कि राम मंदिर निर्माण के लिए नेपाल से ईंट और पत्थर जाने चाहिए।
سویڈن میں پوتر قرآن کے انادر کو لے کر کویت کے سانسدوں نے اس دیش پر پرتبندھ لگانے کی مانگ کی۔ ڈنمارک کے دھر دکشن پنتھی نیتا اسٹریم کرس رامسس راسمس پلودان نے کڑی سرکشا ویوستھا میں اسٹاک ہوم میں ترکی کے دوت آواس کے نکٹ پوتر قرآن کے ایک پرتی کو آگ کے حوالے کیا۔ اس اتیوادی نیتا کی کارواہی پر مسلمانوں کی اور سے کڑی پرتکریائیں آ رہی ہیں۔ سویڈن سرکار دوارا اس کام کو نہ روکنے کے لیے اس کی کڑی آلوچنا کی جا رہی ہے۔ الخلیج آن لائن ویب سائٹ کے انوسار کویت کے سانسدوں نے منگلوار کو ایک بیان جاری کر کے سویڈن میں پوتر قرآن کے انادر کی نندا کی۔
روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن نے کہا کہ یوکرین میں جنگ سے ثابت ہو گیا کہ روس کا ایئر ڈیفینس سسٹم دنیا میں سب سے بہتر سسٹم ہے۔ وہیں امریکہ اور جرمنی اوپچارک روپ سے اعلان کرنے والے ہیں کہ وہ یوکرین کو امبراز اور لیوپرڈ دو ٹینک کی سپلائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پوتن نے کہا کہ امریکہ جس سنکھیا میں پیٹریٹ میزائل بناتا ہے، روس اس سے کئی گنا زیادہ سنکھیا میں ایئر ڈیفینس کے لیے استعمال ہونے والے میزائل بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انیک ادیشوں کے لیے استعمال ہونے والے میزائلوں کا اتپادن اس طرح پر ہے کہ پوری دنیا کے سنیکت اتپادن کی برابری کر سکتا ہے۔ پوتن کا کہنا تھا کہ سمبھاونا تو کسی بھی چیز کی ہے، مگر ہمارے سسٹم بہترین کام کر رہے ہیں۔
بھرشٹاچار کے کارن یوکرین کے راشٹرپتی نے اس دیش کے بڑے ادھیکاریوں کے دیش چھوڑنے پر پرتبندھ لگا دیا ہے۔ پشم دوارا یوکرین کو ویاپک استر پر دیے جانے والے ہتھیاروں اور آرتھک سہایتا کو لے کر ویاپک بھرشٹاچار کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اسی سندرب میں یوکرین کے رکشا اپمنتری کو اپنے پد سے تیاگ پتر دینا پڑا۔ یاچیسلاو شاپووالوف پر آروپ ہے کہ ان کے نیتریتو میں کھادیہ سامگری کے سمجھوتے پر تین گنا ادھک مولی کے داموں پر ہستاکشر کیے گئے۔ سینا کا کھادیہ سامگری کا یہ سمجھوتا کئی ہزار کروڑ کا بتایا جا رہا ہے۔ کچھ استھانیہ سوتروں کا کہنا ہے کہ پشچم اور امریکہ کی اور سے جو ہتھیار یوکرین بھیجے جا رہے ہیں، ان میں سے ادھکانش کی کالا بازاری ہو رہی ہے۔ ان سوتروں کے انوسار ان ہتھیاروں کو افریقہ بھیجا جاتا ہے۔
جیسنڈا آرڈرن کے بعد اب نیوزی لینڈ کو ایک نیا پردھان منتری ملا ہے، جن کا نام ہے کرس ہپکنز۔ کرس ہپکنز اب سے نیوزی لینڈ کے پردھان منتری ہوں گے۔ وہ نیوزی لینڈ کے پردھان منتری ہونے کے ساتھ ہی وہاں کے لیبر پارٹی کے پرمکھ بھی بن گئے ہیں۔ پردھان منتری پد کی شپتھ گرہن کرنے کے بعد کرس ہپکنز نے کہا کہ یہ میرے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آنے والی چنوتیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں پوری طرح سے تیار ہوں۔ نیوزی لینڈ کے پردھان منتری کا پد سنبھالنے کے پہلے کرس ہپکنز وہاں کے منتری رہ چکے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کورونا مہاماری کے دوران اس سے نپٹنے کے لیے ہپکنز نے کافی محنت کی تھی، جس کی پوری دنیا میں سراہنا کی گئی تھی۔ نیوزی لینڈ میں اکتوبر 2023 میں عام چناؤ ہونے جا رہے ہیں۔
امریکہ میں اب پورو اپ راشٹرپتی مائک پینس کے انڈیانا استھت آواس سے بھی کلاسیفائڈ دستاویز ملے ہیں، جو انہوں نے ایف بی آئی کے حوالے کیے۔ مائک پینس کے پرتنیدھی نے ایک پتر لکھ کر نیشنل آرکائیوز کو اس بارے میں سوچت کیا تھا، اور ایک انیہ پتر میں لکھا کہ دستاویز لینے کے لیے ایف بی آئی پورو اپ راشٹرپتی کے گھر آئی تھی۔ یہ دستاویز ملنے کے ساتھ ہی مائک پینس پورو راشٹرپتی ٹرمپ اور ورتمان راشٹرپتی بائیڈن کی پنکتی میں شامل ہو گئے ہیں، جن کے گھروں سے خفیہ دستاویز ملے ہیں۔ مائک پینس کے پرتنیدھی گریگ جیکب نے 18 جنوری کو نیشنل آرکائیوز کو لکھے گئے پتر میں کہا کہ جو بائیڈن کے گھر سے خفیہ کاغذات ملنے کی خبر پرکاشت ہونے کے ساتھ ہی پینس نے اپنے وکیل سے صلاح مشورہ کیا تاکہ اپنے گھر پر سرکشت خفیہ ریکارڈ کی سمیکشا کر سکیں۔ ایف بی آئی گت 19 جنوری کو پینس کے آواز پر پہنچی اور وہاں سے خفیہ دستاویز حاصل کر لیے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। ब्रिटेन ने ईरान के खिलाफ कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं, जायजा ले रहे हैं कायम रिजवी।
ईरान के विरुद्ध अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के साथ ही साथ ब्रिटेन ने भी कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं। ब्रिटेन ने ईरान के 5 लोगों और 2 संस्थाओं को प्रतिबंधित किया है। लंदन की ओर से लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में इस्लामी गणतंत्र ईरान की थल सेना प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी भी शामिल हैं। प्रतिबंधों के हिसाब से पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय में ये अभूतपूर्व प्रतिबंध हैं। ईरान पर ब्रिटेन के हालिया प्रतिबंधों के बारे में इस देश के विदेश मंत्री ने ये कहा है कि जिन पर आज प्रतिबंध लगाए गए हैं वे सब ईरानी जनता के दमन में शामिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन की ओर से ये कदम सेना और IRGC को केंद्र में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी ने हालिया उपद्रव के दौरान उपद्रवियों के साथ कड़ाई से व्यवहार करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब से इस्लामी क्रांति आई है तब से दुश्मन इस क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र रचते चले आ रहे हैं, हालांकि वे अब तक कुछ नहीं कर पाए और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ईरान की थल सेना के प्रमुख को ब्रिटेन की ओर से प्रतिबंधित करने की कार्रवाई से ये ज्ञात हो जाता है कि इसका संबंध ईरान में हाल में होने वाले उपद्रवों से है। इस प्रकार का काम बहुत कम ही होता है कि दुनिया में इस जैसे उदाहरण भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाएंगे। इस प्रकार के कामों से ईरान के प्रति ब्रिटेन के द्वेष का पता चलता है। ईरान की इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद इस देश में ब्रिटिश हितों को गहरी चोट पहुंची और शताब्दियों से उसके द्वारा की जाने वाली लूट खसोट पर रोक लग गई। ईरान से ब्रिटेन की दुश्मनी का एक कारण ये भी है। वैसे इस समय ब्रिटेन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस काम का अनुसरण कर रहा है जिसके अंतर्गत उसने ईरान की इस्लामी क्रांति के संरक्षक बल IRGC को प्रतिबंधित कर दिया था। अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि यूरोपीय संसद द्वारा IRGC को प्रतिबंधित करना और ब्रिटेन की ओर से ईरान की थल सेना प्रमुख पर पाबंदी वास्तव में ईरान के खिलाफ पश्चिमी षड्यंत्रों का ही भाग है जिसको अमेरिका के नेतृत्व में अंजाम दिया जा रहा है। ईरान में हालिया शांति को देखते हुए पश्चिम ने ईरान की इस्लामी शासन व्यवस्था को कमजोर करने के उद्देश्य से कुछ हथकंडे अपनाए थे जो पूरी तरह से विफल सिद्ध हुए। वर्तमान समय में ब्रिटेन ये सोच रहा है कि अमेरिका की सेवा करके वो संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने दृष्टिगत कुछ विशिष्टताओं को हासिल कर पाएगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
सीरिया में तुर्क सेना के हमले जारी हैं, जायजा ले रहे हैं अख्तर अब्बास।
उत्तरी सीरिया से निकलने के लिए दमिश्क के अधिकारियों के साथ अंकारा के समझौते के बावजूद सीरिया के उत्तरी क्षेत्रों पर तुर्किया की सेना के हमले अभी भी जारी हैं। इस संबंध में तुर्क समाचार साइट TRT ने सीरिया के तल रफअत क्षेत्र में तुर्किया की सेना के हमलों में पीपल्स डिफेंस यूनिट YPG के 20 लोगों की मौत की सूचना दी है। इस तुर्क समाचार एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि पीपल्स डिफेंस यूनिट्स वाई पी जी द्वारा उंजू पेनार क्षेत्र में देश की सीमा रक्षक चौकी पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला करने के बाद तुर्किया की सेना के हमले शुरू हुए हैं। तुर्किया के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी करके एक बार फिर जोर दिया है कि देश की सेना आतंकवादी हमलों का जवाब जरूर देगी। वास्तव में ऐसा लगता है कि सीरिया के उत्तरी क्षेत्रों पर तुर्किया का हालिया हमला जवाबी कार्रवाई था। इस संबंध में उत्तरी सीरिया में विपक्ष और आतंकवादी गुटों से जुड़े सूत्रों ने इदलिब के पूर्वी दरआ में तुर्किया की सेना के ठिकानों पर सीरियाई सेना के भारी तोपखाने के हमले की सूचना दी है। आतंकवादी गुट हयात तहरीर अशाम से जुड़े मीडिया सूत्रों ने दावा किया है कि पिछले रविवार को सीरियाई सेना ने इस क्षेत्र में तुर्किया के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में तुर्किया के कई सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए। इस दावे की अभी तक आधिकारिक सूत्रों द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। इस मामले में सीरियाई सरकार खामोश है। ऐसा लगता है कि पिछले रविवार को अमरीकी सेना की मदद से कुर्दिश मिलिशिया द्वारा तुर्क बलों पर हमले की योजना बनाई गई थी। इन हालात में मूल प्रश्न ये उठता है कि अंकारा और दमिश्क की सरकारों के साथ हालिया समझौतों के बावजूद तुर्क सैन्य बल सीरियाई भूमि पर हमला क्यों जारी रखे हुए हैं। इस संबंध में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सीरियाई कुर्दों के खिलाफ तुर्किया का संभावित जमीनी हमला राजनीतिक कारणों से है, न कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। कुछ विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि तुर्किया सीरियाई कुर्दों पर संभावित जमीनी हमले से राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है और यह हमला चुनाव के समय जितना करीब होगा उतना उसे राजनीतिक लाभ मिलेगा। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी में तुर्किया की घरेलू राजनीति के एक विश्लेषक सिनान जिद्दी ने भी फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि तुर्किया द्वारा सीरियाई कुर्दों के खिलाफ सैन्य हमले को विलंबित किए जाने के पीछे राजनीतिक कारण है और इसका राष्ट्रीय सुरक्षा या रणनीतिक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है।
और अब रुख करते हैं भारत का। गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में बवाल जारी है। ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली से शमशाद काजमी।
वर्ष 2002 में गुजरात के सांप्रदायिक दंगों के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर आधारित बीबीसी द्वारा तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर भारत में विवाद छिड़ गया है। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे सोशल मीडिया कंपनियों को हटाने का निर्देश दिया है। विपक्ष ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है।
आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? वी वुड लाइक टू रिमाइंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री दैट आपको वाजपेयी जी ने क्या कहा था मोदी जी।
प्रतिबंध लगने के बावजूद इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाने के प्रयास को लेकर हंगामा हो रहा है। आज दिल्ली के जामे मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में भी विश्व विद्यालय प्रशासन की अनुमति न मिलने के बावजूद इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की घोषणा की गई थी। वातावरण खराब करने के आरोप में पुलिस ने 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार इस घटना को लेकर उक्त विश्वविद्यालय की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हंगामे के बीच जामिया विश्वविद्यालय के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं और छात्रों को उसमें प्रवेश की अनुमति रोक दी गई है। जामे मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री दिखाने की अनुमति मांगी थी जिसे जामिया प्रशासन ने देने से मना कर दिया था। छात्र आज शाम 6 बजे गेट नंबर 8 पर डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़े रहे जिसके बाद विश्वविद्यालय के छात्रों को नोटिस जारी किया गया और आयोजकों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है। मंगलवार की रात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ द्वारा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को कैंपस में दिखाया जाना था लेकिन प्रसारण से आधा घंटे पहले कैंपस की बिजली काट दी गई। यूट्यूब और ट्विटर पर से सरकार के आदेश के बाद उक्त डॉक्यूमेंट्री को हटाए जाने को लेकर भी छात्रों ने विरोध जताया। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस को आज उस समय झटका लगा जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटोनी के पुत्र अनिल एंटोनी ने इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप है कि पार्टी ने उनसे डॉक्यूमेंट्री के विरोध वाले ट्वीट को हटाने के लिए कहा था। अनिल एंटोनी ने कहा कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचारों से देश की संप्रभुता को खतरा है। अनिल एंटोनी की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केरल कांग्रेस के विभिन्न विंगों ने घोषणा की थी कि 2002 के गुजरात दंगों पर विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पूरे राज्य में की जाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस विवादित डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा पीस करार दिया है। शमशाद कासमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आपने सुना कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, और अब प्रस्तुत हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण।
आशा की किरण।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण की कन्नकड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि महामुक्तिदाता के पैदा होने की खबर किसी को भी नहीं थी, यहाँ तक कि सदगुणों से सुसज्जित इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की फूफी हकीमा खातून भी इस चीज़ से अवगत नहीं थी, और इमाम ने अपने घर बुलाने के बाद उन्हें इस बात की जानकारी दी और कहा था कि आज 15 शाबान है, आज रात को महान ईश्वर अपने अंतिम दूत को जाहिर करने वाला है, वो मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी होगा।
हजरत हकीमा खातून ने जब ये बड़ी खुशखबरी सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हुई, परंतु हजरत हकीमा खातून ने किसी भी गर्भवती महिला को घर में नहीं देखा, तो उन्होंने इसके बारे में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, तो इमाम ने महामुक्तिदाता की माँ हजरत नरजिस की तरफ इशारा किया और कहा कि जिस तरह हजरत मूसा की माँ के पेट से गर्भवती होने का कोई चिन्ह स्पष्ट नहीं था, उसी तरह हजरत नरजिस के पेट से भी गर्भवती होने का कोई चिन्ह स्पष्ट नहीं है। उसके बाद हजरत हकीमा हजरत नरजिस की देखभाल में लग गईं, यहाँ तक कि सूरज निकलने का समय निकट आ गया कि न्याय के सूरज का जन्म हुआ।
महामुक्तिदाता के दुनिया में आने के कुछ समय बाद हजरत हकीमा खातून उन्हें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास ले गईं और महान ईश्वर के आदेश से महामुक्तिदाता ने अपने पिता के हाथों में महान ईश्वर के एक होने और पैगम्बर इस्लाम की पैगम्बरी की गवाही दी, और उसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम से लेकर 11वें इमाम यानी अपने पिता तक पैगम्बर इस्लाम के समस्त उत्तराधिकारियों पर दुरूद व सलाम भेजा। सलाम हो न्याय और प्रकाश के उस सूरज पर जिसे अत्याचारियों ने बुझाने की कोशिश की, परंतु महान ईश्वर ने उसे इस दुनिया में भेज कर बता दिया कि पूरी दुनिया मिलकर भी उसके न्याय व प्रकाश के सूरज को नहीं बुझा सकती। ये महामुक्तिदाता हैं जिनके पावन अस्तित्व की वजह से महान ईश्वर ने दुनिया को बाकी रखा है, उनकी वजह से पूरी मानवता व समूचा ब्रह्मांड कायम है, उनकी वजह से लोग परिपूर्णता का शिखर तय कर रहे हैं।
आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को
पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, जब इमाम महदी जुहूर करेंगे तो उनके सर पर बादल छाया होगा और एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि ये महदी ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और इनका अनुसरण करो। पैगंबर इस्लाम की हदीस से पूरी तरह स्पष्ट है कि महामुक्तिदाता का जुहूर अवश्य होगा और वो पूरी दुनिया को उस तरह से न्याय से भर देंगे जिस तरह से वो अन्याय से भरी होगी।
रोचक बिंदु यह है कि पैगंबर इस्लाम की हदीस में है कि आवाज़ देने वाला लोगों से कहेगा कि ये महदी हैं और इनका अनुसरण करो, यानी लोगों का परम दायित्व महामुक्तिदाता का अनुसरण होगा और वही इंसान मुक्ति व कल्याण का रास्ता तय करेंगे जो उनका अनुसरण करेंगे। जो लोग मुक्तिदाता के आदेशों का अनुपालन नहीं करेंगे वे लोक परलोक में घाटा उठाएंगे। महामुक्तिदाता के आदेशों की अवज्ञा महान ईश्वर की अवज्ञा है। महान ईश्वर की अवज्ञा यानी तबाही, बर्बादी और लोक परलोक में घाटा है।
इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि इमाम महदी अलैहि सलाम के जुहूर से पहले लोग दो प्रकार से मरेंगे, एक सफेद और दूसरे लाल मौत से। सफेद मौत यानी बहुत ही भयावह मौत, इस प्रकार से कि हर 7 में से 5 व्यक्ति की मौत इस प्रकार से होगी जैसे महामारी, जबकि लाल मौत यानी तलवारों और हथियारों से होने वाली मौत। इसी प्रकार इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की एक अन्य हदीस में है कि महामुक्तिदाता के जुहूर से पहले एक तिहाई लोग मारे जाएंगे, एक तिहाई लोग मर जाएंगे और एक तिहाई लोग ही बचेंगे, और वे लोग झूठ बोलते हैं जो मुक्तिदाता के जुहूर की भविष्यवाणी करते और समय निर्धारित करते हैं। हम अहले बैत उनके जुहूर का समय नियत व निर्धारित नहीं करते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब नमाज जनाजा पढ़ने का समय आया तो जाफर कज़्ज़ाब नाम का इमाम का भाई नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ कि एक बच्चा आया और उससे कहा कि चचा आप हटिए, मैं नमाज पढ़ाने के योग्य हूँ। ये बच्चा कोई और नहीं था, ये महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम थे। इसके बाद महामुक्तिदाता कुछ वर्षों के लिए लोगों की नजरों से ओझल हो गए और इस दौरान कुछ विशेष लोगों के माध्यम से महामुक्तिदाता लोगों से संपर्क में रहे और इमाम जो लोगों की नजरों से गायब हो गए थे वो कुछ वर्षों के लिए था और उस समय को गैबत-ए-सुगरा कहा जाता है। और उस दौरान जिन 4 लोगों के जरिए आम लोग इमाम के संपर्क में थे उन्हें नवाब-ए-अरबा कहा जाता है।
इमाम के गायब होने की सूचना पैगंबर इस्लाम और दूसरे इमामों ने भी दी थी, इसके बावजूद अंतिम इमाम के बारे में लोगों के मतभेद सामने आए, विभिन्न गुट अस्तित्व में आ गए और वे सब अंतिम इमाम के बारे में गुमराह करने वाली बातें करने व कहने लगे। इस प्रकार की स्थिति में महामुक्तिदाता ने सीमितता होने के बावजूद लोगों के मार्गदर्शन और ये बताने का प्रयास किया कि मैं ही अंतिम इमाम हूँ, परंतु चूंकि इस बात का खतरा मौजूद था कि अब्बासी शासकों की ओर से इमाम को गिरफ्तार करके उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, इसीलिए महामुक्तिदाता की महान माता सहित कुछ दूसरे विश्वस्त लोगों ने इमाम को पहचानवाने का महत्वपूर्ण दायित्व अंजाम दिया।
रोचक बात यह है कि जहां कुछ लोगों ने ये समझाने और लोगों के मार्गदर्शन का प्रयास किया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ही महामुक्तिदाता और 12वें इमाम है, वहीं 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई जाफर कज़्ज़ाब ने मौके का फायदा उठाया और कहा मैं अंतिम इमाम हूँ, जबकि सब जानते थे कि वो शराब पीता है और भोग विलास का जीवन व्यतीत करता है और जाफर कज़्ज़ाब के पिता यानि दसवें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने जाफर की उपमा बुतों की उपासना करने वाले हजरत नूह के नालायक बेटे कनान से दी थी। यही नहीं, जाफर कज़्ज़ाब को अब्बासी सरकार का समर्थन भी प्राप्त था और उसने अपने आप को अंतिम इमाम बताकर 11वें इमाम की सारी संपत्ति जब्त कर ली, परंतु अंत में उसकी वास्तविकता स्पष्ट हो गई और वो जलील हुआ।
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के एक सेवक अबुल अदियान जो बात बयान करते हैं वो इस बात की सूचक है कि माँ मुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ हक था और उनका चाचा जाफर कज़्ज़ाब गलत था। वो कहते हैं, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुछ पत्र मुझे दिए थे कि मैं बगदाद के दक्षिण में स्थित मदायन शहर इन्हें ले जाऊं, और जब मैं सामर्रा लौट कर आया तो देखा कि इमाम शहीद हो चुके हैं। अबुल अदियान ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से अंतिम इमाम के बारे में सवाल किया था तो इमाम ने तीन निशानियाँ बयान की थीं। पहली ये कि जो हस्ती तुमसे मेरे खतों का जवाब मांगे, दूसरी जो मेरे जनाजे पर नमाज पढ़े, और तीसरी ये बताए कि थैली के अंदर क्या है, परंतु थैली के बारे में इमाम ने कुछ विस्तार से नहीं बताया था।
ऐसा ही हुआ जैसा इमाम ने बताया था। जब इमाम का सेवक मदायन से समर्रा पहुंचा तो इमाम शहीद हो चुके थे और बड़े ताजुब से देखा कि लोग जाफर कज़्ज़ाब को इमाम के रूप में सांत्वना और मुबारकबाद दे रहे हैं। अबुल अदियान जानते थे कि जाफर कज़्ज़ाब अंतिम इमाम व मुक्तिदाता नहीं हो सकता। उसके बावजूद वो जाफर कज़्ज़ाब के पास गए, परंतु उसने अबुल अदियान से पत्रों का कोई जवाब नहीं मांगा।
इस बीच इमाम के एक सेवक ने जाफर कज़्ज़ाब से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पार्थिव शरीर पर नमाज पढ़ने के लिए कहा, और जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो एक बच्चा आया और उसने हटा दिया और कहा कि चाचा हटिए, मैं अपने पिता पर नमाज पढ़ने के योग्य हूँ।
इस घटना के बाद उस बच्चे ने अपने पिता के वफादार सेवक से पत्रों का जवाब मांगा। ये इमाम होने की दूसरी अलामत थी जो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने सेवक को बताई थी। अबुल अदियान कहता है कि कुछ दिनों के बाद कुम शहर से कुछ लोग समर्रा गए ताकि इमाम को पत्र और कुछ पैसा दें, परंतु उनसे कहा गया कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का निधन हो चुका है और जाफर उनका उत्तराधिकारी है। लोगों का गुट जाफर कज़्ज़ाब के पास गया और तसलियत देने के बाद पूछा कि वो बताए कि इस थैली में क्या है। जाफर कज़्ज़ाब उनके सवाल का जवाब ना दे सका। उसके बाद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर से एक सेवक बाहर निकला और उसने बताया कि थैली के अंदर क्या है। इस प्रकार उस सेवक ने बताया कि पत्रों के अंदर क्या है और उनमें क्या लिखा है, और कुम के जिन जिन लोगों ने पैसा भेजा था उन सब का नाम भी बता दिया। ये सुनने के बाद कुम से जाने वाले गुट ने थैली को इमाम के सेवक के हवाले कर दिया और उन्हें विश्वास हो गया कि जिस व्यक्ति ने इस सेवक को भेजा है निश्चित रूप से वही इमाम है।
इस घटना के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि महामुक्तिदाता ही अंतिम इमाम हैं और जाफर कज़्ज़ाब छोटा इमाम है। महामुक्तिदाता को पहचानवाने में खुद आपकी माँ हजरत नरजिस खातून की बड़ी भूमिका रही है। यहाँ की इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने खुद नरजिस खातून को अपना उत्तराधिकारी बताया था। इस महान और बहादुर महिला ने कहा कि इमामत का दावा करने में जाफर झूठा है, अंततः वो अवैध रूप से हत्याए गए धन के बंटवारे पर बाध्य हो गया। जब लोगों को पता चला कि जाफर झूठा है और वो इमाम नहीं है तो लोग धीरे धीरे उसके पास से दूर हो गए और आर्थिक दृष्टि से उसकी बहुत बुरी हालत हो गई। यहाँ तक कि खुद महामुक्तिदाता की माँ हजरत नरजिस खातून उसका और उसके परिजनों का खर्चा देती थी।
हकीमा खातून भी वो महान महिला थीं जिन्होंने महामुक्तिदाता की रक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। हकीमा खातून दसवें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बहन और 11वें इमाम امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے حضرت حکیمہ خاتون کو ہی اپنے گھر بلایا تھا اور مہا مکتی داتا کے جن کی شبھ سوچنا انہیں دی تھی۔
تو دوستو آج کے کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، انومتی دیجیے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتاؤں آپ نے سنا ساپتاہک کاریکرم آشا کی کرن، اور اب پرستت ہے سبھا کا انتم کاریکرم آج کل۔ آج کل
دوستو کارکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ مریم مہردادی اور سید مسم کا سلام سویکار کیجیے۔ آج ہم فرانسیسی پترکا شارلی ہیبدو دوارا نئے اپمان جنک کرتیہ کی سمیکشا کریں گے۔
حال ہی میں فرانسیسی پترکا شارلی ہیبدو نے ایران کی اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے اپمان جنک کارٹونوں کی ایک پرتیوگتا آیوجت کی تھی اور ان کارٹونوں کو پرکاشت کیا تھا۔ اس خبر کو پشچمی سنچار مادھیموں نے پرمکھتا سے پرکاشت اور پرسارت کیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اپمان جنک کارٹون پرکاشت کرنے کے بعد یورپ میں اپمان جنک کرتوں کا یہ دوسرا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس پترکا نے کئی بار اس طرح کے اپمان جنک کارے کیے ہیں۔ یہ پترکا دراصل ایک دھرم ورودھی پترکا ہے جو کسی بھی دھرم یا مت کا سمان نہیں کرتی ہے، لیکن جب بات اسلام کے اپمان کی آتی ہے تو یہ پترکا اسلام کی دشمنی میں اگرم پنکتی میں دکھائی دیتی ہے۔
حالانکہ خود فرانس میں بھی اس پترکا کے پاٹھک بہت کم سنکھیا میں ہیں، یہی وجہ ہے کہ کئی بار اس کا پرکاشن بند ہوتے ہوتے بچا ہے۔ آرتھک سنکٹ سے بچنے کے لگتا ہے کہ دھارمک وشواسوں کے اپمان کو یہ پترکا ایک رننیتی کے روپ میں لیتی ہے۔ فرانسیسی ادھیکاری شارلی ہیبدو کے اس رننیتی کو ابھی ویکتی کی آزادی قرار دیتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا بھی دھیان دیا جائے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی مذاق سے کم نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو 1990 کا دشک یاد ہے وہ روجر گیرودی جیسی ہستی سے بھی اوگت ہوں گے۔ اس دارشنک کو صرف اس لیے سزا سنائی گئی تھی کیونکہ انہوں نے ہولوکاسٹ کا انکار کیا تھا۔ اسی طرح سے انہیں ایک فرانسیسی عدالت نے 1998 میں دا فاؤنڈنگ متھس آف اسرائیل پولیٹکس نامک کتاب لکھنے کے لیے 120,000 فرانک یعنی قریب $40,000 کا جرمانہ دیا تھا۔
اس کے علاوہ فرانس ایک ایسا دیش ہے جہاں کی سرکار نے دیش میں وشیش سرکشا استھتی کو لگاتار کئی ورشوں کے لیے بڑھا دیا ہے۔ فرانسیسی راشٹرپتی میکرا نے 2021 میں ہٹلر کے ساتھ ان کی تلنا کرنے والے بل بورڈ کے ایک ڈیزائنر کو راشٹرپتی کا اپمان کرنے کے لیے عدالت میں کھینچ لیا تھا۔ اب ان سمست گھٹنا کرموں کے باوجود یہ دیش اور اس کے ادھیکاری ابھی ویکتی کی آزادی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟
شارلی ہیبدو کو ابھیویکتی کی آزادی کا پلیٹ فارم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ ورشوں سے اس کا صرف ایک ہی ہنر رہا ہے اور وہ ہے دوسروں کا اپمان کرنا یا ان کے دھارمک وشواسوں اور پرتیکوں کا اپمان کرنا۔ اس کا ایک ادھارن پیغمبر اسلام کے اپمان جنک کارٹون پرکاشت کرنا ہے، دوسرے یہ کہ اس کا ابھیویکتی کی آزادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ ورشوں پہلے جب اس پترکا کے کارٹونسٹ موریس سینے نے فرانس کے پورو راشٹرپتی سرکوزی کے بیٹے کی آلوچنا کی تو انہیں معافی مانگنے اور استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ سرکوزی کے بیٹے نے امیر یہودی لڑکی جیسیکا ڈارٹی سے شادی کی تھی اور یہودی دھرم سویکار کر لیا تھا۔ मॉरिस ने यहूदी धर्म का कोई अपमान नहीं किया था, लेकिन सिर्फ यहूदी धर्म का नाम लेने पर ही उन पर इस धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। उस समय शार्ली हेब्दो ने अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला देकर अपने कार्टूनिस्ट का बचाव नहीं किया।
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड और कई अन्य यूरोपीय देशों में मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं के अपमान और उपहास के कई उदाहरणों को एक साथ रखने से इस दावे की पुष्टि हो जाती है कि इस तरह की हरकतें सिर्फ कुछ बीमार लेखकों और पादरियों के दिमाग की उपज नहीं हैं, बल्कि ये एक प्रवृत्ति है जिसके पीछे कुछ बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्दा डालना और लोगों का उनसे ध्यान भटकाना होता है।
आज इस्लामी गणतंत्र ईरान के दुश्मन अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लामी व्यवस्था का नेतृत्व या इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता इस्लाम और लोकतंत्र के बीच की एक मुख्य कड़ी हैं। इस स्थिति में कि जब इस्लामी क्रांति ने धार्मिक और इस्लामी मान्यताओं को स्थापित किया है और देश की सीमाओं से निर्यात किया है, और दूसरी ओर फ्रांसीसी क्रांति के पाखंडी मूल्यों और फ्रांस के झूठे मानवाधिकारों को चुनौती दी है, तो वे इस व्यवस्था के स्तंभ को निशाना बना रहे हैं।
ऐसे समय में इस अपमानजनक हरकत को अंजाम देना कि जब ईरान में आंतरिक और बाहरी गुरुओं द्वारा उपद्रव और दंगे समाप्त हो चुके हैं, एक बार फिर कमजोर पड़ चुके इन गुरुओं में जान डालने का एक प्रयास है। दुश्मन चाहता है कि हिंसा और विरोध का ये चक्र जारी रहे और उनकी रणनीति को दोहराया जाता रहे। हिंसा और अराजकता को जारी रखने के लिए पश्चिमी देशों की जासूसी एजेंसियां और उनके एजेंट इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अब इस मुर्दा शरीर में सांसें फूंकने से उसमें नई जान पड़ने वाली नहीं है। यहाँ ये बिंदु भी ध्यान योग्य है कि जब इंसान के पास तर्क नहीं होता है या वो अपने तर्क में कमजोर पड़ जाता है तो वो अपमान और उपहास का सहारा लेता है। जैसा कि फारसी में एक मुहावरा है कि बर्तन से वही बाहर आता है जो उसमें होता है, इसी तरह से नीच और तुच्छ लोग नीच और तुच्छ हरकतें ही करते हैं।
जब भी किसी के पास तर्क और दलील नहीं होती है तो वो तर्कहीन शैली अपनाता है या वो अपमान करता है, जैसा कि मक्के के अनेकेश्वरवादियों ने किया था। वे ऊंट की ओझड़ी पैगम्बर इस्लाम के सिर पर फेंक दिया करते थे, या ऐसा शख्स अपशब्द और गालियों पर उतर आता जैसा कि अनेकेश्वरवादी पैगम्बर इस्लाम को बुरा भला कहा करते थे। मक्के के शायर अपनी कविताओं में पैगम्बर इस्लाम का उपहास उड़ाते थे जिससे उन्हें दुख पहुंचता था। खुदा ने पैगम्बर इस्लाम को ढारस देते हुए कहा, निसंदेह हमने तुम्हें उपहास करने वालों से बचाया।
ये अपमान और उपहास आज भी जारी है। इस्लाम के उदय को 1500 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस्लाम के दुश्मन आज भी इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में इस्लाम के विस्तार से नाराज ये लोग थोड़े थोड़े समय बाद पैगंबर इस्लाम को निशाना बनाते हैं, हालांकि ये एक मूर्खतापूर्ण कदम है। ये सूरज की तरफ कीचड़ उछालने जैसा है। विश्लेषकों का मानना है कि शार्ली हेब्दो का ये अपमानजनक कदम भी ईरान की इस्लामी व्यवस्था की उल्लेखनीय शक्ति और बढ़ती प्रगति के खिलाफ वैश्विक ज़ायोनीवाद की हताशा को दर्शाता है।
ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता का गौरव और सम्मान चरम पर है, इसलिए इस तरह के अपमानजनक कार्टूनों या अपशब्दों का उनके चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनका अपमान करना वास्तव में इस्लामी उम्मा के सबसे सम्मानित और साहसी व्यक्ति का अपमान करना है, जो सुंदर मानवीय नैतिकता, गहरी अंतर्दृष्टि और ज्ञान रखता है। जाहिर है कि तुच्छ और महत्वहीन लोगों द्वारा सम्मानित और महान लोगों के खिलाफ इस तरह की हरकत कोई अजीब या अनोखी बात भी नहीं है। निश्चित रूप से ईश्वर काफिरों और अनेकेश्वरवादियों के हमलों का जवाब खुद देगा और उनके हमलों को उनकी ही ओर पलटा देगा।
इस संदर्भ में शहीद सानी ने अपनी एक किताब में दो लोगों की एक दास्तान बयान की है। दो लोग अलग अलग मदरसों में दाखिला लेते हैं जबकि उनके जूतों में कीले लगी हुई हैं। जब उनमें से एक से इसकी वजह पूछी जाती है तो वो कहता है कि पैगम्बर इस्लाम ने धार्मिक शिक्षा का महत्व बयान करते हुए फरमाया है कि धार्मिक छात्रों के पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पैर बिछाते हैं। मैं चाहता हूं कि इन कीलों से इन फरिश्तों के परों को कुचल दूं। शहीद सानी कहते हैं कि कुछ दिन बाद दोनों पर अजाब नाजिल हो गया। ईश्वर कुरान मजीद में फरमाता है, वे चाहते हैं कि खुदा के नूर को अपने मुंह से बुझा दें, लेकिन खुदा चाहता है कि अपने नूर को पूर्ण करे यद्यपि काफिरों को दुख पहुंचे।
किसी बुरे काम या अनैतिक कार्य पर प्रतिक्रिया देना भी जरूरी होता है। इस्लाम में हर बुरे काम की प्रतिक्रिया उस काम को अंजाम देने वालों की सच्चाई को सामने लाना है, जैसा कि सिफिन की लड़ाई में हजरत अली अपने सैनिकों को सिफारिश कर रहे थे कि माविया को अपशब्द नहीं कहें बल्कि उनकी हकीकत को लोगों के सामने जाहिर करें, जो गाली देने से ज्यादा प्रभावी है।
शार्ली एब्दो शायद इस वास्तविकता से अवगत नहीं है कि कई बार इस्लामोफोबिया के प्रयासों के बावजूद उसे किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है। पहले उसने पैगंबर इस्लाम के अपमानजनक कार्टून प्रकाशित किए और अब ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता के अपमानजनक कार्टूनों की प्रतियोगिता का आयोजन किया, लेकिन इससे इस्लामी जगत में आयतुल्ला खामेनेई के सम्मान में कोई कमी नहीं हुई है और वे आज भी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। बल्कि इस तरह के अपमानजनक कृत्यों से मुसलमानों में एकता और एकजुटता बढ़ी है। इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल और ये प्रसारण पेश किया जा रहा था शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रमों के बारे में आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। तो श्रोताओ, इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अगली मुलाकात तक अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज। Oh,